आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। डिप्टी नेशनल्स नेता ब्रिजिट मैकेंजी ने लेबर पार्टी पर गठबंधन की स्वास्थ्य नीति को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। लेबर पार्टी पर स्वास्थ्य नीति को लेकर डर फैलाने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि लेबर ने यह दावा किया है कि गठबंधन अपनी न्यूक्लियर नीति की लागत को पूरा करने के लिए अर्जेंट केयर क्लिनिक बंद कर देगा। गठबंधन ने लेबर द्वारा घोषित नए क्लिनिकों की संख्या से मेल खाने का कोई वादा नहीं किया है, लेकिन क्लिनिक बंद करने की कोई योजना भी घोषित नहीं की गई है। स्काई न्यूज पर लेबर के वरिष्ठ सांसद मरे वॉट ने कहा कि पीटर डाटन का रिकॉर्ड खुद बोलता है। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें कि पीटर डाटन ने हमारे मेडिकेयर अर्जेंट केयर क्लिनिकों के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि वे उनमें से कुछ को बनाए रखेंगे, लेकिन उन्हें अपने 600 अरब डॉलर के न्यूक्लियर रिएक्टर की लागत निकालनी है और उनके पास मेडिकेयर और इन अर्जेंट केयर क्लिनिकों में कटौती करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। वहीं स्काई न्यूज पर ब्रिजिट मैकेंजी ने कहा कि यदि गठबंधन सत्ता में आई तो एक भी क्लिनिक बंद नहीं किया जाएगा। उनका कहना था, हम बल्क बिलिंग के उस स्तर पर वापस जाना चाहते हैं जैसा कि ये पूर्व गठबंधन सरकार के समय था। लेबर डर फैलाने वाला अभियान चला रही है, जबकि इस देश में लेबर पार्टी के शासन में डॉक्टर को दिखाना और कठिन और महंगा हो गया है। वहीं फेडरल ग्रीन्स नेता एडम बैंट ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और कैबिनेट विभाग को एक पत्र लिखकर ग्रीन बुक तैयार करने का अनुरोध किया है, ताकि त्रिशंकु संसद की स्थिति के लिए तैयारी की जा सके। हर चुनाव से पहले लोक सेवक लेबर सरकार की संभावित जीत के लिए रेड बुक और गठबंधन सरकार के लिए ब्लू बुक तैयार करते हैं। इन पुस्तकों में संबंधित पार्टियों की नीतियां और उनके लागू करने के तरीकों का विवरण होता है, लेकिन एडम बैंट का कहना है कि इस चुनाव में अल्पमत सरकार यानी माइनॉरिटी सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। वहीं इस ईस्टर वीकेंड के दौरान हुए एक हादसे में डूबने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि एक मछुआरे की मौत हो गई है और एक 14 वर्षीय लड़का स्थिति में है। रविवार सुबह सिडनी के दक्षिणी इलाके वटामोला में दो लोगों के समुद्र में बह जाने की खबर के बाद आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। ये ताज़ा घटना कई डूबने की घटनाओं की श्रृंखला में और है और सामने आई है, जिनमें न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी तट पर दो मछुआरों और सिडनी के उत्तरी हिस्से में एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु शामिल है। न्यू साउथ वेल्स की उप मुख्यमंत्री प्रू कार ने कहा है कि लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वे लाइफ सेवर्स की सलाह का पूरा पूरा पालन करें। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर से ईसाई तीर्थयात्री कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम में एकत्र हुए हैं, जहां उन्होंने होली फायर समारोह में भाग लिया। ईस्टर का ये गहरा प्रतीकात्मक अनुष्ठान 1200 साल से अधिक पुराना है और आमतौर पर हजारों श्रद्धालु चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में इकट्ठा होते हैं, जहां ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह को दफनाया गया था। इस धार्मिक महत्व के बावजूद इसराइल ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कई फिलिस्तीनी ईसाई इस समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल ने घोषणा की कि वे वेस्ट बैंक के केवल 6000 ईसाइयों को ही अनुमति देंगे, जबकि वहां लगभग 50,000 ईसाई रहते हैं। स्थानीय श्रद्धालु जॉर्ज हनानिया का कहना है कि ये बहुत मुश्किल है कि इस तरह का त्योहार मनाया जाए, जबकि फिलिस्तीनियों को लगातार मारा जा रहा है। और अब अंत में खबरें भारत से। अमेरिकी उपराष्ट्रपति J.D. वैंस और उनकी पत्नी उषा वैंस 21 अप्रैल को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे। यह उनकी पहली भारत की यात्रा होगी। वे अपने 3 बच्चों और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भारतीय समय से सोमवार सुबह 10 बजे पालम एयरबेस पर उतरेंगे, जहां एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करेंगे। वैंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनके सम्मान में सोमवार शाम को रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। दोनों नेताओं के बीच साझा आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क प्रमुख हैं। दो हफ्ते पहले भारत के शीर्ष निर्यातक संगठन FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर घोषित 26% आयात शुल्क से घरेलू उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि FIEO के महानिदेशक और CEO अजय सहाय ने कहा था कि भारत की स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जल्द पूरी होगी, जिससे इन आपसी शुल्कों को राहत मिल सकेगी। वैंस दिल्ली, जयपुर और आगरा का दौरा करेंगे। दिल्ली में उनका अक्षरधाम मंदिर जाने का भी कार्यक्रम तय है और 22 अप्रैल को वे जयपुर में प्रमुख पर्यटक स्थलों का दौरा करेंगे और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे आगरा जाएंगे, जहां वे ताजमहल और शिल्पग्राम का भ्रमण करेंगे। 23 अप्रैल को वैंस परिवार जयपुर लौट आएगा और 24 अप्रैल को अमेरिका के लिए वापस रवाना हो जाएगा। और इसी के साथ 20 अप्रैल 2024 के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। डीजे वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।